मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो निर्देश दिए हैं उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन एक अलग अंदाज में। आइए इससे पहले एक छोटी सी खबर को देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, बिजनेस स्टैंडर्ड में तो ये हेडलाइन ही है। हेडलाइन ये है कि ये लग रहा है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, यानी कि वहां का जो केंद्रीय बैंक है, वो शायद अपने यहां ब्याज दरों को बढ़ा दे, ऐसे संकेत मिले हैं। और जैसे ही ऐसे संकेत मिले, हमारा जो शेयर बाजार है, जो दो तीन दिनों से लगातार बढ़ रहा था, अचानक थमा और थोड़ा सा गिर भी गया। ये समाचार बहुत ही सामान्य सा समाचार है और आप लोग अखबारों में इस तरह की बातें पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जब इस तरह की बातें पढ़ने को मिले तो दो बिंदु उनके दिमाग में उभरने चाहिए। पहला तो यह कि जो खबर मैं पढ़ रहा हूं यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो सच पूछे तो यदि सीधे सीधे आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरा, क्या विचार करने की दृष्टि से यह मुझे एक अवसर उपलब्ध कराता है? क्योंकि देखिए, जब भी सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में बातें होती हैं, मैं हमेशा आप सबसे ये कहता हूं कि आपकी जो तैयारी है वैज्ञानिक पद्धति से होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है कि कार्य कारण संबंध। फेडरल रिजर्व में ब्याज बढ़ने की संभावना है, ब्याज दर बढ़ने की संभावना है, और इसके भय से भारतीय बाजार, शेयर बाजार थोड़ा सा गिर जाता है। तो क्या हो गया भाई, वहां बढ़ रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है, तो भारतीय बाजार क्यों गिर रहा है? जब आप अखबार पढ़ेंगे, खासकर बिजनेस स्टैंडर्ड में, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी हेडलाइन है, तो आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा कि बाजार क्यों बढ़ रहा है। देखिए, अखबार सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं छप रहा है ना, वो तो एक सामान्य तरीके से छप रहा है, सबके लिए छप रहा है। तो आपको कारण की तलाश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। या तो आप अपनी तरफ से उत्तर ढूंढ लीजिए जो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत उत्तर ढूंढ लेंगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर आप अर्थशास्त्र की किताब से समझने की कोशिश कीजिए, अगर वहां भी संभव नहीं है तो फिर आप किसी से समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन सही सही समझ आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सरल सा इसका उत्तर है, कठिन उत्तर नहीं है, बहुत ही सरल उत्तर है। अखबारों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा विदेशी निवेशक और एक दूसरा शब्द मिलेगा घरेलू निवेशक। विदेशी निवेशक का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी विदेश के ऐसे लोग जो भारत में पैसा लगाते हैं, है ना, वो फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जो विदेशी निवेशक थे, अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, उन्होंने कल शेयरों में बिकवाली की, यानी कि उन्होंने खूब शेयर बेचे, लगभग 500 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। घरेलू निवेशकों का ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़े से खरीदे, 40-45 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, चलिए हम 50 करोड़ मान लेते हैं। तो 500 करोड़ के शेयर बेचने वाले लोग थे, लेकिन खरीदने वाले 50 करोड़ थे। तो आपको क्या लग रहा है, सप्लाई ज्यादा होगी? 500 करोड़ के शेयर बिकने के लिए सप्लाई के लिए मार्केट में है, लेकिन उसकी मांग कितनी है, केवल 50 करोड़ की, तो सप्लाई ज्यादा हो गई। सप्लाई ज्यादा हो गई तो सीधी सी बात है कि रेट तो कम होंगे ही, ये सामान्य से सिद्धांत से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बात यह है कि भाई जो ये विदेशी निवेशक हैं, इन्होंने बेचने का फैसला क्यों किया? 500 करोड़ रुपए के शेयर वो बेच रहे हैं, और हो सकता है कि जब अगली बार सोमवार को बाजार खुले या आज फ्राइडे है, आज वो और ज्यादा बेचने के लिए सामने आ जाए तो फिर क्या होगा, तो बाजार और गिरेगा। तो यहां फिर से एक प्रश्न उठता है कि ये बेच क्यों रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, बहुत ही सरल उत्तर है, ये बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बैंक ब्याज दरों को बढ़ा देंगे। जब वो ब्याज दरों को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये जो शेयर बेचने वाले जो लोग हैं, ये कुछ इनके दिमाग में इस तरह की बात चल रही है कि यार शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालो और फिर बैंक में जमा कर दो, क्योंकि वहां ज्यादा ब्याज मिलेगा, खत्म हो गई बात, तो शिफ्ट कर रहे हैं वो। देखिए ये लोग तो बहुत ही थोड़े थोड़े प्रतिशत पर काम करते हैं, तो जहां भी जिसको लाभ दिखेगा वो वहीं जाएगा। तो उनको लग रहा है कि नहीं, जो इंडियन शेयर मार्केट है इससे ज्यादा फायदा तो उन्हें अमेरिकन बैंक में अगर वो जमा कर देंगे तो वहां मिल सकता है फायदा। तो सीधी सी बात है कि वहां वो पैसा जमा कर सकें तो उनको धन चाहिए, तो यहां के इन्वेस्टमेंट को वो वहां इन्वेस्ट करेंगे या सेव कर देंगे। बस सिंपल सी थ्योरी है। आपको कठिन लग रहा है? नहीं ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। और एक बार यदि आपने समझ लिया तो बात खत्म हो गई, आपको अर्थशास्त्र समझ में आ गया। प्री एग्जामिनेशन में ज्यादातर दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे इसी पैटर्न के पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, थोड़े से हाथ पैर मारने होंगे, मेहनत करनी होगी कि यार ये मामला है तो इस मामले को जरा सा समझना है, राइट। अब मैं आता हूं दोस्तों आज के मुख्य विषय पर, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। इसके बारे में आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने डिसीजन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं देखिए छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको यह भी पता लग सके या कह लीजिए कि एक क्षमता पैदा हो सके कि किसी भी घटना को मुझे किस तरीके से देखना है, पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है, फोकस करना है। अदरवाइज तो देखिए बातें बहुत सी लिखी गई, न्यूज आइटम के रूप में भी बातें आई, फिर एडिटोरियल कमेंट्स के रूप में भी आपको पढ़ने को मिला होगा और साथ ही साथ आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिले होंगे, आपने दूरदर्शन पर और दूसरे चैनल्स पर इस पर डिस्कशन भी सुने होंगे। तो एक बड़ा सा जंगल आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो अब आपके लिए संकट ये होता है कि आप अपने काम की चीज इसमें से कैसे निकालें। सबको समेट कर अगर आप चलेंगे तो मान करके चलिए कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन में अगर ये प्रश्न पूछा गया मुख्य परीक्षा में तो 200 शब्द 250 शब्द मैक्सिमम, लिखने के लिए आपके पास वक्त कितना है 8-9 मिनट, और फोकस्ड तरीके से लिखना है, मार्क्स तो तभी मिलेंगे, कुछ भी लिख के आने से मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो जब तक आप फोकस्ड तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, मान करके चलिए कि आप फोकस्ड तरीके से आंसर भी नहीं दे सकेंगे, दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए, राइट। तो मैं इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख करके आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों पहली बात यह कि संविधान पीठ थी, 5 जजों की पीठ थी, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पांचों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, पांचों ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है। इसके क्या इंपॉर्टेंस हो गई? सामान्यतः आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो फैसले आए हैं जिन्हें आप माइलस्टोन कह सकते हैं आप इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की, उसमें भी 5 अगर संविधान पीठ है तो उसमें 4-1 के फैसले आए हैं, यानी कि 4 ने कहा कि यह होना चाहिए, 1 ने उससे असहमति व्यक्त की। लेकिन अगर 5 के 5 कह रहे हैं तो बात खत्म हो गई, यानी कि इस पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सरकार इस फैसले के विरुद्ध कोई कदम उठाती है तो डेफिनेटली उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल यह उठता है कि सरकार इसके विरुद्ध क्या कदम उठा सकती है? सरकार के पास संसद है, ठीक है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को संसद में विधेयक लाकर उसे बदला जा सकता है, पलटा जा सकता है, नई बातें रखी जा सकती हैं। ऐसा इससे पहले भी हुआ है और यह संविधान सम्मत है, इससे संविधान की आत्मा का हनन नहीं होता है। तो अगर सरकार चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के बारे में जो संविधान पीठ है उसने जो फैसला दिया है उसके विरुद्ध अगर एक्ट लेकर के आती है, विधेयक पारित करा करके एक्ट बना देती है, तो डेफिनेटली उसे जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 5 ने एक जैसी बातें कही हैं। सामान्य तौर पर टिप्पणियां अलग अलग हैं लेकिन फैसला वही है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस तरह का दुस्साहस करेगी। तो एक छोटी सी बात, संविधान पीठ ने जो सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है उसके बारे में। दोस्तों अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि फैसला क्या सुनाया है, क्योंकि इस पर मैं विस्तार से आपसे बातें करूंगा और इसके माध्यम से बहुत दूसरी चीजों को भी समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात अनुच्छेद को लेकर के मैं बताना चाहूंगा। देखिए हमारे बहुत से अनुच्छेद हैं, संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं, एग्जामिनेशन में यहां तक कि प्री में भी सीधे सीधे अनुच्छेदों पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस अनुच्छेद के अनुसार। ऐसे में जो स्टूडेंट हैं उन्हें बड़ा भ्रम हो जाता है कि यार फिर सारे अनुच्छेद को क्या पढ़ना जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत से जो लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे तो पता लगेगा कि उसमें पूरे अनुच्छेद 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 के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में हमें सभी अनुच्छेदों से परिचित होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई अनुच्छेद 19 है तो 19(1), 19(2), 19(b), 19(3), 19(c), 19(d), क्या इस तरह का परिचित होना जरूरी है? मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। याद रखिए कि एग्जामिनेशन में अगर किसी अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है प्री एग्जामिनेशन में, तो उसका संबंध करंट अफेयर्स से होता है। करंट अफेयर्स में किसी कारण से वह जो अनुच्छेद था वो काफी चर्चा में रहा, तो प्री में पूछ लेते हैं आपकी सतर्कता को चेक करने के लिए। तो पहली बात कि आप सभी अनुच्छेदों को रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, और अगर कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो आतंकित मत होइएगा, अपनी तैयारी करने के रास्ते को मत बदलिएगा, राइट? अब चुनाव आयुक्तों के बारे में संविधान पीठ ने बात कही, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेफिनेटली उन्होंने अनुच्छेद की चर्चा की होगी। इसका मतलब है कि निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं या जो थोड़ी इस तरह की जो टेक्निकल जानकारी है कह लीजिए, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, राइट? तो इसका ज्ञान क्या हो सकता है? पहली बात, इस संविधान के भाग 15 में है, उसका शीर्षक है निर्वाचन, इंग्लिश में इलेक्शंस। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। भाग 15 याद हो गया। फिर है अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 324 से यह शुरू होता है, अनुच्छेद 324, और खत्म हो जाता है अनुच्छेद 329A, जिसे हिंदी में आप कहते हैं क, यानी कि मोटे तौर पर कह लीजिए 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के बारे में संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, राइट? दोस्तों, अब समय हो गया है और मुझे इस पर आप सबसे चूंकि विस्तार से बातें करनी है, इसलिए मैं अब अपने इस विषय को फिलहाल यहीं पर विराम देने के लिए बाध्य हूं। हम लोग सोमवार को इस पर फिर आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे मेल मिले हैं, आप सब की शुभकामनाएं जो हम लोगों को मिली हैं होली के उपलक्ष्य में, उसके लिए मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से दोस्तों आप सबके प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें करेंगे। नमस्कार।